एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं जिसने कह सकते हैं दुनिया भर में काफी हलचल मचाई थी। क्रिस्टोफर हिचिन्स की गॉड इज नॉट ग्रेट, हाउ रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग।
हाँ, मतलब नाम से ही अंदाजा लग जाता है कि ये धर्म को लेकर कोई बहुत नर्म रवैया नहीं रखने वाली किताब है।
बिल्कुल नहीं। और ये किताब इसलिए भी आज, मतलब आजकल के माहौल में बहुत मायने रखती है क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि दुनिया में धर्म, आस्था, फिर तर्क, विज्ञान, इनके बीच एक तरह की खींचतान सी चल रही है।
सही बात है। ऐसे माहौल में क्रिस्टोफर हिचिन्स जैसे मुखर आलोचक के विचारों को समझना जरूरी हो जाता है, भले ही कोई उनसे सहमत हो या ना हो, है ना?
हाँ बिल्कुल। उनकी किताब ये बुनियादी सवाल उठाती है कि क्या धर्म वाकई समाज के लिए अच्छा है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फायदे से ज्यादा नुकसान कर रहा है।
हाँ, और आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम हिचिन्स के तर्कों और विचारों को समझें, मतलब जैसा कि वो हमें मिले स्रोतों और किताब के सारांशों में मिलते हैं।
जी, हमारा मकसद उनके नज़रिए को साफ तौर पर रखना है, बिना किसी लाग लपेट के, कि वो कहना क्या चाह रहे थे।
तो बात शुरू करते हैं लेखक से ही। क्रिस्टोफर हिचिन्स ये 1949 से 2011 तक रहे। एक जाने माने ब्रिटिश अमेरिकी लेखक थे, पत्रकार और पब्लिक इंटेलेक्चुअल कह सकते हैं। ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए थे
और अपनी बातों को बहुत बेबाकी से रखने के लिए मशहूर थे। उनका अनुभव भी काफ़ी दिलचस्प था। मतलब शुरुआत में वो वामपंथी पत्रकार रहे, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसे विचारक बने जिन्हें किसी एक खांचे में रखना वो थोड़ा मुश्किल था।
अच्छा।
उन्होंने दुनिया के कई ऐसे इलाकों से रिपोर्टिंग की जहां संघर्ष चल रहा था, जैसे उत्तरी आयरलैंड, बाल्कन, मध्य पूर्व, और इन जगहों पर उन्होंने करीब से देखा कि कैसे धार्मिक कट्टरता जो है ना, वो हालात को और बिगाड़ सकती है।
तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था उनको।
बिल्कुल। और बौद्धिक तौर पर भी वो बहुत दमदार थे। इतिहास, साहित्य, राजनीति, इन सब पर उनकी अच्छी पकड़ थी। बहस करने में माहिर थे, मतलब तीखे सवाल पूछते थे।
हाँ, सुना है काफी तीखे वक्ता थे।
बहुत। और किसी भी स्थापित हस्ती या विचार पर उंगली उठाने से कतराते नहीं थे। इस किताब से पहले भी वो मदर तेरेसा जैसी शख्सियत की आलोचना करके सुर्खियां बटोर चुके थे।
अच्छा।
तो उनकी सोच पर ना वो ज्ञानोदय, जिसे एनलाइटनमेंट कहते हैं, उसके मूल्यों का गहरा असर था। यानी तर्क, सबूत, बोलने की आजादी, और सबसे बढ़कर हर दावे पर शक करना, सवाल उठाना। तो ये किताब एक तरह से उनकी जिंदगी भर की सोच और बहस का निचोड़ है, जिसमें वो धर्म को इंसानी तरक्की की राह में एक बड़ा रोड़ा मानते हैं।
तो चलिए अब आते हैं किताब के, मतलब उसके दिल पर। इसका मूल विचार क्या है? जैसा आपने कहा, हिचिन्स का सीधा और सपाट तर्क है कि धर्म ना सिर्फ झूठा है बल्कि ये इंसानी सभ्यता के लिए जहर जैसा है।
जी, उनका मानना था कि ये अज्ञान, अंधविश्वास, तानाशाही सोच और हिंसा को बढ़ावा देता है।
तो चिकाब का बुनियादी सवाल यही है, क्या धर्म दुनिया के लिए अच्छा है? और हिचिन्स का जवाब है, बिल्कुल नहीं।
हाँ, वो मानते हैं कि धर्म से जो थोड़े बहुत फायदे दिखते हैं, जैसे मुश्किल में सहारा मिलना या लोगों का एक साथ आना, कम्युनिटी बनना, वो उस भारी नुकसान के सामने कुछ भी नहीं है जो धर्म की वजह से हुआ है या उनके हिसाब से हो रहा है।
और अपनी बात साबित करने के लिए किताब इतिहास, दर्शन, विज्ञान और खुद हिचिन्स के निजी तजुर्बों का इस्तेमाल करती है ना?
जी बिल्कुल। ये सिर्फ किसी एक धर्म की आलोचना नहीं है, बल्कि ईश्वर में यकीन रखने के पूरे विचार पर ही सवाल उठाती है। एक तरह से ये धर्म के दावों को सिलसिलेवार ढंग से, मतलब स्टेप बाय स्टेप, काटने की कोशिश है।
और ये किताब किसके लिए है? मतलब क्या ये सिर्फ नास्तिकों के लिए है?
दिलचस्प बात यह है कि ये किताब सिर्फ नास्तिकों या शक करने वालों के लिए नहीं लिखी गई। हिचिन्स उन लोगों से भी बात करना चाहते थे जो अपने मजहब में तो हैं, लेकिन शायद उसके कुछ पहलुओं पर सवाल उठा रहे हैं।
अच्छा।
उनका मकसद, कम से कम उनके समर्थकों के अनुसार, भावनाओं को भड़काना नहीं बल्कि तर्क और सबूतों के जरिए अपनी बात रखना था।
तो हिचिन्स अपने इस बड़े दावे कि धर्म जहर है कुछ साबित कैसे करते हैं? मतलब किताब कैसे आगे बढ़ती है?
किताब की शुरुआत में ही वो कहते हैं कि मजहबी यकीन रखना दिमागी तौर पर बेईमानी है और नैतिकता को बिगाड़ता है। वो खुद को सिर्फ नास्तिक यानी एथेस्ट नहीं बल्कि एंटीथीस्ट कहते हैं।
एंटीथीस्ट, इसका मतलब क्या हुआ?
एंटीथीस्ट होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि वो ईश्वर में यकीन नहीं रखते, इसका मतलब है कि वो ईश्वर में यकीन रखने के विचार को ही समाज के लिए सक्रिय रूप से हानिकारक मानते हैं। वो सोचते हैं कि ये विश्वास ही अपने आप में एक समस्या है।
अच्छा, मतलब नास्तिक होना एक बात है और ये मानना कि ईश्वर में विश्वास रखना ही गलत है, ये दूसरी बात है।
बिल्कुल, और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए वो सीधे धर्म और हिंसा के कनेक्शन पर आते हैं। वो नफरत को एक तरह से पवित्र बना देता है, उसे जायज ठहराता है, और लोगों को इस हद तक कट्टर बना देता है कि समझौता करना बहुत मुश्किल हो जाता है।
सही बात है। और हिंसा के बाद हिचिन्स उन किताबों पर सवाल उठाते हैं जिन्हें पवित्र माना जाता है।
हाँ बिल्कुल, वो पुराने नियम यानी ओल्ड टेस्टमेंट को देखते हैं और कहते हैं कि ये तो क्रूरता, कत्लेआम, नस्लवाद और एक ऐसे ईश्वर की कहानी है जो मतलब मनमर्जी से जुल्म करता है। वो कहते हैं कि ये प्यार करने वाले पिता की छवि नहीं बल्कि एक तानाशाह की छवि ज्यादा लगती है।
और नए नियम यानी न्यू टेस्टमेंट के बारे में उनका क्या कहना है?
विनाली ही क्रिटिसाइज करें, उसे वो और भी कपटी मानते हैं। दो बातें उन्हें खास तौर पर खटकती हैं। पहली, दूसरों के पापों के लिए किसी एक का बलिदान, जिसे विकेरियस रिडेम्पशन कहते हैं।
अच्छा, विकेरियस रिडेम्पशन।
हाँ, हिचिन्स के लिए ये नैतिक रूप से बहुत गलत विचार है कि किसी बेगुनाह को दूसरों के गुनाहों की सजा मिले। और दूसरी बात, नरक यानी हेल की कल्पना, मतलब दुनिया में किए गए सीमित गुनाहों के लिए कभी न खत्म होने वाली सजा, इसे वो एक भयानक और तानाशाही सोच मानते हैं।
और इस्लाम और कुरान के बारे में भी उन्होंने लिखा है।
जी, कुरान के बारे में हिचिन्स का तर्क है कि ये काफी हद तक यहूदी और ईसाई धर्म ग्रंथों से ली गई बातें हैं, इसमें कुछ बहुत नया या मौलिक नहीं है, और वो इसमें भी ऐसी आयतें ढूंढते हैं जो उनके मुताबिक हिंसा, औरतों को दबाने और दूसरे धर्मों के लोगों के प्रति नफरत को बढ़ावा देती हैं।
तो मतलब उनका तर्क ये है कि ये जो पवित्र कहे जाने वाले ग्रंथ हैं, असल में वो काफी समस्याग्रस्त हैं।
हाँ, उनके नजरिए से तो यही है।
तो ग्रंथों की आलोचना के बाद हिचिन्स धर्म के उन पहलुओं पर आते हैं जो शायद रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हैं और जिन्हें वो तर्क के खिलाफ मानते हैं।
जैसे?
हाँ, जैसे कुछ खाने पीने के नियम। वो सुअर का मांस न खाने जैसे नियमों का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि ये पुराने जमाने के डर या शायद उस वक्त की जरूरतों पर आधारित थे जिनका आज कोई तार्किक आधार नहीं है, लेकिन धर्म इन्हें बिना सवाल किए मानने पर जोर देता है।
अच्छा,
तो ये दिखाता है कि कैसे आस्था अक्सर तर्क पर हावी हो जाती है।
बिल्कुल, और ईश्वर के होने के सबूतों के बारे में, खासकर वो जो डिजाइन का तर्क है कि दुनिया इतनी सलीके से बनी है कि जरूर इसे किसी ने बनाया होगा।
हाँ, ये दलील तो बहुत आम है।
उसे हिचिन सिरे से खारिज करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया को ध्यान से देखो, इसमें बीमारियां हैं, भूकंप है, बाढ़ है, कितनी सारी खामियां हैं। क्या कोई बुद्धिमान डिजाइनर ऐसी दुनिया बनाता? उनका मानना है कि डार्विन का विकासवाद एवोल्यूशन वो ज्यादा बेहतर तरीके से समझाता है कि जीवन इतना जटिल कैसे बना बिना किसी डिजाइनर के।
ये तो विज्ञान और तर्क की बात हुई। क्या वो ये भी कहते हैं कि धार्मिक सोच सेहत के लिए भी खतरनाक हो सकती है?
बिल्कुल, वो एड्स के फैलने के दौर में कैथोलिक चर्च द्वारा कॉन्डोम के विरोध का उदाहरण देते हैं, या फिर स्टेम सेल रिसर्च जैसे मेडिकल एडवांसमेंट का धार्मिक आधार पर विरोध। वो दिखाते हैं कि कैसे मजहबी हठधर्मिता लोगों की जान बचाने या बीमारियों का इलाज ढूंढने में रुकावट बन सकती है।
तो अगर धर्म ग्रंथों में समस्याएं हैं, तर्क के खिलाफ जाता है, हिंसा से जुड़ता है, तो फिर ये आया कहां से? हिचिन्स के मुताबिक इसकी जड़ क्या है? ये इतना फैलावा क्यों है?
उनका सीधा जवाब है, धर्म इंसानों ने बनाया है, ये ईश्वर की तरफ से नहीं आया। और क्योंकि ये इंसानों ने बनाया है, इसलिए इसमें बनाने वालों की कमियां, उनके पूर्वाग्रह, उनका उस जमाने का अधूरा ज्ञान, सब कुछ झलकता है।
मतलब ये इंसानी जरूरत का नतीजा है।
हाँ, पवित्र ग्रंथों में मिलने वाली ऐतिहासिक गलतियां, वैज्ञानिक भूलें और ऐसी नैतिक बातें जो आज हमें बिल्कुल गलत लगती हैं, ये सब इसी बात का सबूत है कि ये इंसानी रचनाएं हैं, दैवीय नहीं।
और क्या ये आलोचना सिर्फ पश्चिमी धर्मों, यहूदी, ईसाई, इस्लाम तक ही सीमित है, या पूरब के धर्मों पर भी कुछ कहते हैं?
नहीं, ये भी एक जरूरी बात है। हिचिन सिर्फ इब्राहिमी धर्मों पर ही नहीं रुकते, वो पूरब के धर्मों जैसे हिंदू और बौद्ध धर्म की भी आलोचना करते हैं।
अच्छा, क्योंकि अक्सर उन्हें ज्यादा शांतिप्रिय माना जाता है।
हाँ, लेकिन हिचिन्स इस छवि पर सवाल उठाते हैं। वो श्रीलंका में बौद्धों से जुड़ी हिंसा का जिक्र करते हैं या हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था की क्रूरता का। उनका कहना है कि कोई भी धर्म कट्टरता, हिंसा और अन्याय से पूरी तरह मुक्त नहीं है। ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है उनके हिसाब से।
तो अगर हम पूरी किताब के बड़े संदेशों को समेटें तो कुछ खास बातें उभर कर आती हैं। पहली तो यही कि हिचिन्स के लिए धर्म और तर्क या विज्ञान ये एक दूसरे के दुश्मन जैसे हैं।
हाँ बिल्कुल, आस्था का मतलब ही है बिना सबूत के मान लेना, जबकि विज्ञान और तर्क सबूत मांगते हैं। वो कहते हैं ये दो अलग अलग रास्ते हैं।
और इतिहास भी दिखाता है, गैलीलियो से लेकर डार्विन तक, धर्म ने अक्सर नई वैज्ञानिक खोजों का विरोध किया है।
जी,
ये टकराव आज भी कई मुद्दों पर दिखता है, जैसे विकासवाद पढ़ाने पर बहस या कुछ मेडिकल तकनीकों पर बहस वगैरह
वगैरह। दूसरा बड़ा संदेश हिंसा और तानाशाही से जुड़ा है। हिचिन्स का मानना है कि धर्म अक्सर हम बनाम वो की खतरनाक सोच पैदा करता है ना?
हाँ, कि अपने मजहब वाले सही हैं और दूसरे गलत या दुश्मन, ये प्रवृत्ति हिंसा और दमन को बढ़ावा दे सकती है।
और ऐतिहासिक तौर पर भी देखें तो कई बार धर्म ने राजाओं या तानाशाहों का साथ दिया है, जनता का नहीं।
सही कहा। आज भी हम दुनिया में कई जगह देखते हैं कि कैसे धर्म का इस्तेमाल करके लोगों को लामबंद किया जाता है, नफरत फैलाई जाती है और कई बार सत्ता हासिल की जाती है।
तीसरा, नैतिकता का सवाल। ये बहुत बड़ा दावा है धर्म का कि नैतिकता उसी से आती है। हिचिन्स इसे कैसे चुनौती देते हैं? वो कहते हैं कि पवित्र मानी जाने वाली किताबों में गुलामी, कत्लेआम, औरतों को कम आंकना, ऐसी बातें भरी पड़ी हैं जिन्हें आज कोई भी नैतिक नहीं मानेगा। तो फिर नैतिकता धर्म से कैसे आई?
मतलब वो ग्रंथों के अंदर से ही उदाहरण देते हैं।
बिल्कुल, उनका तर्क है कि इंसानी शराफत, हमदर्दी और सही गलत की समझ धर्म से पहले भी थी और धर्म के बिना भी हो सकती है। हम तर्क और आपसी समझ के आधार पर भी एक नैतिक समाज बना सकते हैं।
और चौथा अहम पहलू कि धर्म असल में इंसानों की जरूरतें और इच्छाएं पूरी करने का एक तरीका है।
हाँ, हिचिन्स मानते हैं कि धर्म शायद इंसानों के डर से पैदा हुआ, मौत का डर, अनजान का डर, साथ ही उनकी अज्ञानता और शायद ताकत पाने की चाहत से। ये जिंदगी के मुश्किल सवालों के आसान जवाब देता है, लेकिन उनके हिसाब से वो जवाब झूठे हैं।
जैसे हम क्यों हैं, मरने के बाद क्या होता है, इस तरह के सवाल।
गेम मनोवैज्ञानिक तौर पर ये समझ आता है, लोगों को सुकून चाहिए, जिंदगी का कोई मतलब चाहिए, अमर होने की ख्वाहिश होती है। धर्म ये सब देता है, भले ही उसके लिए ठोस सबूत ना हो। ये इंसान की गहरी इच्छाओं को अपील करता है।
इस किताब की भाषा काफी तीखी है, जैसा हमने शुरू में कहा, और इसमें कई ऐसी लाइनें हैं जो मतलब दिमाग में अटक जाती हैं। शायद सबसे मशहूर तो पहली पंक्ति है, रिलीजन पॉइजन्स एवरीथिंग।
हाँ, धर्म हर चीज में जहर घोल देता है। ये बहुत ही सख्त बयान है। इसका मतलब है कि हिचिन्स मानते थे कि धर्म का बुरा असर जिंदगी के हर हिस्से पर पड़ता है, विज्ञान, राजनीति, नैतिकता, रिश्ते, सब पर।
ये कोई छोटी मोटी आलोचना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आरोप है।
बिल्कुल।
एक और मशहूर विचार है जिसे हिचिन्स रेजर कहते हैं, व्हाट कैन बी असर्टेड विदाउट एविडेंस कैन ऑल्सो बी डिसमिस्ड विदाउट एविडेंस। इसका मतलब क्या हुआ, जरा समझाएंगे?
इसका मतलब है जिसे बिना सबूत के कहा जा सकता है उसे बिना सबूत के खारिज भी किया जा सकता है। ये तर्क का एक सिद्धांत है कि सबूत लाने की जिम्मेदारी दावा करने वाले की होती है।
अच्छा,
अगर कोई कहे कि आसमान में उड़न तश्तरी है या कोई और बड़ा दावा करे तो उसे सबूत देना होगा। आप सिर्फ अपनी आस्था या यकीन के दम पर कोई बड़ा दावा करके ये उम्मीद नहीं कर सकते कि बाकी लोग उसे गलत साबित करें। सबूत का बोझ आप पर है।
तो ये सीधे सीधे आस्था के आधार पर किए जाने वाले दावों पर चोट है।
जी हाँ।
और नैतिकता पर भी उनकी एक यादगार बात है, ह्यूमन डीसेंसी इज नॉट डिराइव फ्रॉम रिलीजन, इट प्रीसीड्स इट। यानी इंसानी शराफत धर्म से नहीं आती, ये उससे पहले मौजूद है।
ये फिर से वही बात है, धर्म का ये दावा कि नैतिकता उसी की देन है, हिचिन्स उसे नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमदर्दी, इंसाफ, दूसरों की मदद करना, ये भावनाएं और जरूरतें इंसान होने के नाते हम में हैं। ये धर्म के आने से पहले भी थीं और धर्म के बिना भी रह सकती हैं। ये हमारी बायोलॉजी और सामाजिक विकास का हिस्सा है।
तो ये सब सुने के बाद सवाल उठता है कि इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या मतलब है? क्या इनसे कुछ सीखा जा सकता है, भले ही हम हिचिन्स से पूरी तरह सहमत न भी हों?
मुझे लगता है एक चीज जो शायद सभी के काम आ सकती है वो है अपनी आलोचनात्मक सोच, यानी क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करना।
कैसे?
हिचिन्स का तरीका था, सुनो पर सवाल पूछो, दावा देखो पर सबूत मांगो, और अगर सबूत तुम्हारी राय के खिलाफ जाएं, तो अपनी राय बदलने की हिम्मत रखो। ये नजरिया सिर्फ धर्म पर ही नहीं बल्कि राजनीति, खबरों, विज्ञापनों, हर चीज पर लागू हो सकता है।
हाँ, ये तो बहुत काम की बात है, और इतिहास और आज की दुनिया को समझने में भी ये मदद कर सकता है शायद।
बिल्कुल, जब हम नेताओं या समूहों को धर्म की दुहाई देते सुनते हैं तो हम ये सोचने की कोशिश कर सकते हैं कि क्या वाकई ये धर्म की बात है या इसके पीछे कोई और मकसद, राजनीतिक या आर्थिक, छिपा है। इससे हमें घटनाओं की बेहतर समझ मिल सकती है
और नैतिकता के बारे में सोचने का तरीका भी बदल सकता है।
हाँ, अगर नैतिकता सिर्फ धार्मिक आदेशों पर टिकी ना हो तो हम तर्क, हमदर्दी और नतीजों के आधार पर सोच सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत। इससे मुश्किल नैतिक फैसलों में शायद ज्यादा गहराई से विचार किया जा सके, ना कि सिर्फ किसी किताब में लिखी बात मान ली जाए।
और हाँ, विज्ञान की अहमियत समझ आती है, सबूतों पर आधारित ज्ञान को आस्था पर तरजीह देना। साथ ही जो लोग अपने मजहब को लेकर शक या सवालों से जूझ रहे हैं,
हाँ, उनके लिए उन्हें शायद हिचिन्स के तर्कों में एक तरह का बौद्धिक सहारा मिले। उन्हें लग सकता है कि सवाल पूछना या शक करना गलत नहीं है बल्कि सोचने की प्रक्रिया का हिस्सा है। इससे शायद वो अपराध बोध से बाहर निकल पाएं।
बिल्कुल, तो अगर हमें इस पूरी चर्चा से कुछ खास बातें निकालनी हो एक एक करके, तो आपके लिए सबसे बड़ी बात क्या होगी?
मेरे लिए शायद सबसे बड़ी बात है बौद्धिक ईमानदारी पर जोर। अपनी सबसे गहरी मान्यताओं पर भी कठोरता से सवाल उठाने की हिम्मत रखना और सबूतों के सामने अपनी सोच बदलने को तैयार रहना। ये एक तरह से सोचने के तरीके को बदलने का बुलावा है। यकीन की जगह सबूत को तरजीह देना।
हाँ, ये जरूरी है, और मेरे लिए ये विचार अहम है कि नैतिकता और जिंदगी का मकसद धर्म के बिना भी मुमकिन है। हिचिन्स एक ऐसे रास्ते की तरफ इशारा करते हैं जहां इंसान अपनी समझ, विज्ञान और आपसी हमदर्दी के जरिए एक अच्छा और मीनिंगफुल जीवन जी सकता है, बिना किसी ऊपर वाले के सहारे के। एक धर्मनिरपेक्ष मानवतावाद की बात।
सही है, और अंत में एक सवाल जो हिचिन्स छोड़ जाते हैं, जिस पर सोचा जा सकता है। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की थी जहां इंसान धर्म पर कम और तर्क पर ज्यादा निर्भर होगा। क्या ऐसा मुमकिन है? और अगर मुमकिन है तो क्या ये बेहतर होगा? ये एक बड़ा सवाल है जिसके बारे में सोचने की जरूरत है।
बिल्कुल, इस सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकृत फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।